ओम शांति। जीवन एक सुंदर यात्रा है, हमें इसे एंजॉय करना है। और हमारा जीवन परमात्मा की शक्तियों के साथ, उसके वरदानों के साथ या स्वयं उसके साथ चलने वाला बहुत सुंदर जीवन है, हमें इसको एंजॉय करना है। दो बातें आज हम लेकर चलेंगे। हमारा ये महान यज्ञ है ना, महान कितना, अनलिमिटेड। यहां से अब वो समय आ गया है, आने वाला है नहीं, आ गया है कि यहां से संसार को लाइट और माइट मिलेगी, प्योरिटी के वाइब्रेशंस मिलेंगे। यज्ञ निर्विघ्न तो सारा संसार विघ्नों से मुक्त हो सकेगा। इसलिए बाबा बार बार कहते आए, इस यज्ञ को निर्विघ्न बनाओ। दोनों बातें हम लेकर चलते हैं। हम सभी का यज्ञ से बहुत प्यार है या नहीं? मैं जब अपने बारे में सोचता हूं तो हम तो यज्ञ का खाकर ही बड़े हुए, यज्ञ की पालना पाकर ही सब कुछ मिला जीवन में। जैसे किसी के लौकिक माँ बाप किसी की पालना करें, हमारी तो सारी पालना प्रभु पालना हुई, यज्ञ के द्वारा पालना हुई, यज्ञ का भोजन मिला। जब भी यज्ञ में कोई बात होती है तो हमें बड़ा दर्द होता है, हमारा है ना, ये आप सबकी भी यही फीलिंग होगी, हमारा है। न केवल हमारा है लेकिन हम इसके रक्षक भी हैं बाबा के साथ। तो इस यज्ञ से चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस जाएं, विघ्न विनाशक शक्तियां वाइब्रेट हों चारों ओर। हमें इस पर आज विचार भी करना है और ऐसा प्रैक्टिकल में करना भी है। हम सब जो बाबा के बहुत फेथफुल बच्चे हैं, यहाँ जो यज्ञ के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं या नहीं? माताएं सोच रही हैं, मैं क्या कह रहा हूँ आज, ये हमारे तो बच्चे भी हैं, हम उन्हें संभालें? नहीं, बाबा यज्ञ का मालिक है, हम जानते हैं, और उसके होते हुए यज्ञ को कुछ हो नहीं सकता, ये भी हम जानते हैं, परंतु हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसलिए पहली बात, हम एक सुंदर बाबा की धारणा अपना कर चलेंगे, अपनाई हुई है सभी ने, मैं जस्ट अंडरलाइन कर रहा हूं, कुछ भी हो जाए उसको समाना है, फैलाना नहीं। संगठनों में क्या होता है, बात होती है छोटी और बन जाती है तूफान। हर बात का यदि हम विश्लेषण करें तो पता चलेगा बात तो बहुत छोटी थी, बढ़ गई, तूफान बन गई, उससे हमारा यज्ञ कमजोर होता है। यज्ञ को कमजोर करने वाली चीज इम्प्योरिटी और बहुत सारे संकल्प व्यर्थ के वातावरण, इससे हमें यज्ञ की सुरक्षा करनी है। कोई बात कहे भी तो हम उसको हल्का करके समाप्त करें, किसी से कुछ गलती हो भी जाए तो उसको उड़ाएंगे नहीं, समाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा संगठन है, ये ऐसा यज्ञ है जिसमें हजार लोग एक साथ रहते हैं। जितनी पार्टी आती है उसमें हमें भोजन में भी प्लस 1000 करना पड़ता है। 1000 लोगों में 5-7 खराब भी हो, इट्स पॉसिबल, लेकिन हमें अपनी महानताओं को, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को छोड़ना नहीं है, पहली चीज है। यही चीज जीवन की यात्रा को एंजॉय करने के लिए भी है। बाबा हमें सिखाते आए, जैसे हमसे कोई गलती हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं क्या चाहूंगा, अब भाई कोई इसका वर्णन न करे, मेरे लिए सभी प्यार की दृष्टि रखें, ऐसा ना मुझे लोग टेढ़ी नजर से देखें, मेरा वातावरण बनाएं, जैसे हम अपने लिए ये सोचते हैं वैसे ही हमें दूसरों के लिए भी यही सोचना है। गलती हो जाती है, हमारा बड़ा संगठन है। देखिए किसी भी संगठन में चार तरह की आत्माएं होती हैं, पांच तरह की, टॉप मोस्ट पहली लाइन वाले, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, साधारण और फेल होने वाले भी होते हैं दो चार। ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है, ये हर संगठन में ऐसे होता ही है, कोई बहुत महान तो कोई बहुत साधारण। लेकिन हमें अपने वाइब्रेशंस फैलाकर यज्ञ को बल देना है। मैं ये चाहता हूं हमारी सभा से 25 पावरफुल योगी, 50 साधारण योगी मिल जाए, ठीक है ना? 25 ऐसे पावरफुल योगी जिनके वाइब्रेशंस यज्ञ को स्ट्रॉन्ग करें, और कोई भी बात यदि यज्ञ में आती है वो उड़ जाए, समाप्त हो जाए। बातें तो आएंगी क्योंकि कलयुग का अंत आ गया है, अंतिम चरण नहीं अब अंत, हमने अंत में प्रवेश कर लिया है। इसलिए हमारे कई कर्तव्य हैं अब हमें, जो हमने पुण्य जमा किए हैं, जो हमने साधनाओं का बल जमा किया है, जो हमने योग युक्त होकर अपने को पावरफुल बनाया है, अब उसको यूज करने का समय है। आज जब हम सवेरे की मुरली सुन रहे थे, तुम चेतन सितारे हो धरती के, वो सितारे तो थोड़ी सी रोशनी देते हैं, सचमुच तो ये के देते भी नहीं, लेकिन तुम धरती के चेतन सितारे हो, संसार को रोशन करते हो। और एक बहुत सुंदर लाइन थी, आप सबने भी नोट की होगी, तुम उन सितारों से महाबलवान हो। नोट की, हम अपने इन शक्तियों को पहचाने, हम साधारण नहीं हैं, हमारे संकल्पों में ही बहुत बल है। क्या होगा, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? क्या होगा ये नहीं, वही होगा जो हम चाहेंगे, कल पहले हुआ था वो नहीं, वही होगा जो हम चाहेंगे। इसलिए कुछ बहनें, कुछ पावरफुल भाई, 25 ऐसे रहे जो सुंदर संकल्प करें, संकल्प शक्ति से विघ्नों को नष्ट करें। मुझे याद है दीदी मनमोहिनी से मिलते हुए बाबा ने ये बात कही थी, बात बहुत पहले की है, 81-82 की होगी। जैसे तुम ये कहते हो जो ड्रामा में होगा हो जाएगा, या जो कल पहले हुआ था वही होगा, एक दिन ऐसा आएगा तुम ये कहोगे जो हम चाहेंगे वही होगा। समझ ले अपनी अपनी पावर्स को, इसलिए हम न परेशान हो, न चिंतित, न निगेटिव, जो हम चाहेंगे बोलो, विश्वास हो इस बात में, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति है। और एक संकल्प में यदि सब स्थित हो जाए तो वो संकल्प चमत्कारिक कार्य कर सकता है, एक ही संकल्प यही होगा। भिन्न भिन्न संकल्प नहीं, नेगेटिव संकल्प नहीं, कंफ्यूजन के संकल्प नहीं, डाउट के संकल्प नहीं, यही होगा। अब इस यज्ञ से विनाश की ज्वाला भी प्रकट होने वाली है, विनाश की ज्वाला वो और कुछ नहीं, योग ज्वाला ही विनाश की ज्वाला में बदल जाती है। तो हम सभी अपनी प्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा 25 भाई बहने ऐसे हमारे इस संगठन से हो, हैं ही, मैं कहूं होने नहीं चाहिए, हैं, मैं आप सबको देख रहा हूं, जिनको देखकर दूसरे पवित्र हो जाएं, जिनके वाइब्रेशन से दूसरों की पवित्र वृत्तियां भी प्योरिफाई हो जाएं, जिनके योगयुक्त जीवन को देखकर सभी की छोटी विचारधाराएं समाप्त हो जाएं, जो बाबा से जुड़ जाए देखते ही, तो सभी इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने बहुत बार ये बात कही है और मैं भी याद करता हूँ इस बात को, बाबा हमें सावधान कराए थे, जब विनाश काल आएगा तो माया के पांचों विकार और प्रकृति के पांचों तत्व फुल फोर्स से अटैक करेंगे। तो एक आश्चर्य की बात नहीं है, चारों ओर जैसे काम की अग्नि जली हुई है। आज के मनुष्यों को देखो आप, मैं तो फोन से जानता हूँ, मुझे फोन आते हैं लोगों के, युवक और युवतियों का बुरा हाल, बड़ों का भी बुरा हाल, काम वासना प्रकोप में है, उसके वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैले हुए हैं, उसका प्रभाव कमजोर आत्माओं पर आता है। इसलिए हमें क्या करना है, पावरफुल प्योर वाइब्रेशंस फैलाकर अपने इस यज्ञ के किले को सुरक्षित करना है, ताकि वो इम्प्योर वाइब्रेशंस हमारे घेरे को न तोड़ सके। हमारा घेरा है ना पावरफुल वाइब्रेशंस का, और ये वाइब्रेशंस दूसरों को बल देने लगे, तो अपनी प्योरिटी को फिर से रिवाइज करेंगे। हमारा पवित्रता का मार्ग है, हम इस मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे ही और सबको ले जाएंगे। मार्ग चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, चाहे चारों ओर विकारों की आग लगी हुई हो, वो हमें सेक नहीं दे सकती। रोज सवेरे उठते ही अपने चारों ओर पावरफुल ओरा क्रिएट करेंगे, प्रभा मंडल। कैसे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये संकल्प करके देखेंगे, चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल गई, घेरा बन गया। फिर दूसरा संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब ये घेरा और बड़ा हो गया। फिर तीसरी बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब ये ओरा और दूर तक चला गया। पावरफुल कर देंगे इसको, हम भी सुरक्षित और इस प्रभाव से संसार की अनेक आत्माएं भी सुरक्षित। तो किसी के अंदर भी कोई इम्प्योर फीलिंग उठती हो, उसे समाप्त कर देना है, क्योंकि हमें तो संसार को प्योर वाइब्रेशंस देने हैं, व्यर्थ से मुक्त। पसंद है ये बात सभी को, हम सब यज्ञ के रक्षक बन जाएं। कौन कौन बनेंगे, बहुत अच्छा, यज्ञ के रक्षक। और रक्षा की तभी जरूरत होती है ना जब कुछ आता है, हम ये ना सोचे ये क्यों हो रहा है, पर ये सोचें मुझे क्या करना है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी ना सोचें हमें क्या करना है। तो हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस नेगेटिव वाइब्रेशंस को तत्काल नष्ट कर देते हैं। हमें इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए कि थोड़े से भी योगी आत्माओं के वाइब्रेशंस करोड़ों के नेगेटिव वाइब्रेशंस को नष्ट करने में सक्षम हैं। हमें इस जीवन की यात्रा को एंजॉय करना है, हमारी जीवन की यात्रा पवित्र यात्रा है। सबको अच्छी तरह मालूम है, वो बात भी मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिनके जीवन में योग का बल नहीं है, उनके जीवन में प्योरिटी का बल हो नहीं सकता। इसलिए प्योरिटी को एंजॉय करने के लिए योग 4 घंटे से ज्यादा ही होना चाहिए, और वो आत्माएं जिनका योग 8-10-12 घंटे होगा, उनकी प्योरिटी संसार के लिए श्रृंगार बन जाएगी, केवल अपने लिए नहीं संसार के लिए वरदान बन जाएगी। ऐसे भी बाबा को योगी बच्चे चाहिए जिनका योग 8-10-12 घंटे भी हो, बैठकर नहीं, योग युक्त जीवन, चलते फिरते श्रेष्ठ स्मृतियां। तो योग का हमारा बल संसार को बल देगा। हम पूर्वज हैं, मैं आपको फिर याद दिला दूं, रोज सवेरे एक बार, सवेरे 4 बजे नहीं, 5 बजे, 6 बजे, 2-3 घंटों के अंदर इस गुड फीलिंग में स्वयं को लाना है, मैं पूर्वज हूं, मेरा जन्म महान कार्यों के लिए ही हुआ है, मुझे महान कार्य करने हैं। बाबा से दृष्टि लेकर सारे संसार को दृष्टि देनी है, यज्ञ को भी दृष्टि देनी है, यज्ञ की आत्माओं को भी दृष्टि देनी है। ये काम सभी महान आत्माओं को रोज करना है, बहुत मजा आएगा। चारों दिशाओं में घूम जाओ, एक मिनट ईस्ट की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ, दृष्टि दो संसार को, फिर वेस्ट की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ, सबको दृष्टि दो, चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में, कोनों में भी दृष्टि दे दो। जो ग्रस्त में रहने वाली माताएं बैठी हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को रोज श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर दृष्टि दो, आमने सामने नहीं, सूक्ष्म में ही, क्योंकि कोई ज्ञान में है कोई नहीं है, सूक्ष्म रूप से उन्हें सामने देखकर दृष्टि दे दो। तो हमें महान कार्य करने हैं, हमें वो कार्य करने हैं जो संसार में और कोई नहीं कर सकता, हमारा जन्म ही उन महान कार्यों के लिए हुआ है। जीवन एक सुंदर यात्रा है, इसमें सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, निंदा ग्लानी, स्तुति, जय पराजय, सफलता असफलता सब होती हैं। हम तो भगवान के बन गए, हमें क्यों हो रहा है ये नहीं। सबको इस मार्ग से गुजरना ही है, कभी महिमा होगी कभी ग्लानी होगी। संसार में आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ देवताओं सहित जिसकी ग्लानी न हुई हो, श्री कृष्ण की खूब कर दी, जो सबसे महान आत्मा, राम की भी खूब कर दी, दिखा दिया धोबी के कहने से अपनी सीता को वनवास दे दिया, कैसी बुद्धि थी राम को, हुआ ना प्रैक्टिकल। लोग कमेंट्स तो करते हैं ना, करते हैं, हमारे पास भी ऐसे, कैसा राम तुम्हारा, एक मनुष्य को कहने से अपनी पतिव्रता धर्म पत्नी पवित्र सीता को वनवास दे डाला, अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी ऐसा कर दिया, इससे तो अच्छा होता वो लोगों को कन्विंस कर देता। लोग कहते हैं ऐसी बातें, हमारे पास तो उसके उत्तर हैं, परंतु हमें तो महान कार्य करने हैं। निंदा स्तुति, ऐसी कोई टीम आज तक नहीं हुई जिसे हार का कड़वा स्वाद न चखना पड़ा हो। बड़े बड़े खिलाड़ी भी जीरो पे आउट हो जाते हैं, होते हैं या नहीं, ग्लानी के शिकार होते हैं। ऐसा कोई महान कार्य करने वाला मनुष्य भी नहीं हुआ जिसका लोगों ने अपमान न किया हो, जिसका विरोध न किया हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद थे या प्राचीन काल से सारे महान पुरुष, शंकराचार्य को बहुत विरोध सहना पड़ा, जितने भी महान पुरुष महान कार्यों के लिए आए उन्हें निंदा, विरोध, सफलता असफलता सबका सामना करना पड़ा। तो पहली चीज है, हमें इन दोनों चीजों को स्वीकार करना है। अपने जीवन को देखो, हर व्यक्ति महिमा तो चाहता है, परंतु ग्लानी हो जाए उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए, और ग्लानी सुनकर उदास न होकर उस ग्लानी को सदा की महिमा का आधार बना लेना चाहिए। क्लियर है ना बात, वही ग्लानी क्यों हुई, कहां गलती हो गई, कौन सी सूक्ष्म बात रही, उसे ठीक कर लें तो वो ग्लानी भी हमें पावरफुल बनाएगी, महिमा युक्त बनाएगी। देखिए कोई बात जीवन में आती है, यदि हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखते हैं तो वो बात हमें बहुत शक्तिशाली बना देती है। बाबा की एक मुरली में बढ़ रहा था आज सवेरे, उसमें था, जितने भी परीक्षाएं तुम्हारे सामने आती हैं, ऐसा संकल्प करो वो हमारे मार्क्स जमा करती हैं। तो परीक्षाओं को परीक्षा न समझकर मार्क्स जमा करने का साधन समझ लें, है ही वही। परीक्षाएं अगर ना आए तो मनुष्य शक्तिशाली नहीं बनता। सोना आग में तप कर ही निखरता है, ऐसे ही डाल दो काला पड़ने लगेगा। इसलिए परीक्षाओं से भी डरना नहीं है। हार हो जाए, हार माया से नहीं, माया से तो हार नहीं नहीं है। कहीं छोटी बात, छोटी मोटी हार हमें महसूस हो, हारने के बाद भी जो मनुष्य हार नहीं मानता, विजय का हार तो उसके ही गले में पड़ता है। इसलिए हार हो जाने पर हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं छोड़नी है, उमंग उत्साह को समाप्त नहीं कर देना है। आज हार हुई है, कल जीत होगी। हार भी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। किसी ने हमारा द्वार बंद कर दिया है, दूसरा द्वार खुल जाएगा। अगर अब नहीं दिखाई दे रहा है तो खुलेगा, हमें वो प्राप्त हो जाएगा। बस बात इतनी है, जो मनुष्य अपनी स्थिति को न बिगाड़े, हर चीज उसको आगे बढ़ाएगी। असफलता भी हो जाए लेकिन वो असफलता स्थिति को न बिगाड़ दे, तो असफलता जल्दी ही सफलता में बदल जाएगी। तो जीवन की इस यात्रा पर सब कुछ होता है। अपने विवेक को बिल्कुल इमर्ज रखते हुए हमें हिम्मत से साहस पूर्वक आगे बढ़ना होता है। तो जीवन की यात्रा को एंजॉय करने के लिए एक 5-point plan अपने पास बना लें। सभी 5 बातें धारणा के लिए रख लें, 5-point plan। मैं शुरू कर देता हूं। कुछ चीजों को स्वीकार करके चलना, ये हैं और रहेंगी। जिन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते उन्हें स्वीकार कर लेने में ही फायदा है। मान लो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ रहा है जो स्वभाव से कटु है, जिसको आपके लिए सम्मान से बोलना नहीं आता, जो आपके लिए हमेशा परीक्षा बनकर रहता है। अब आपको रहना ही उसके साथ है तो क्या करेंगे? स्वीकार कर लो। और देखिए उसी में यदि हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना सीख लें तो वो वहीं रह जाएगा, हम शिखर पर पहुंच जाएंगे। और यदि हम शिकायत करते रहे, ये ऐसा करता है, ये ऐसा है, इसके कारण मेरी खुशी नहीं रहती, इसके कारण मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूं, तो वो भी गिरेगा, हम भी गिरेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? हर सिचुएशन को स्वीकार करके उसमें से ही महान बनने का प्लान बना लो। हर एक को खुद करना है ये, क्योंकि हर एक के सामने ये परीक्षा आती है। किसी को रूम में ऐसा साथी मिला हुआ है, बेचारे एक ही साथी से परेशान, सारा दिन सुखी रात को दुखी, वो फोन से ही बात कर रहे 12-1 बजे तक, सोने नहीं देते। जरूरी फोन है मेरे, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। मेरे पास ऐसी बातें आती हैं लोगों की, क्या करे। लेकिन बुद्धिमान वही जो दूसरों का भी ध्यान रखे। मोबाइल ने भी बहुतों की शांति भंग कर दी है, खासकर रात को। दूसरा नियम, कुछ भी हो जाए हम अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे। बहुत सुंदर नियम है ये, हम अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे। तीसरा नियम, खुशी पर हमारा अधिकार है, हमसे हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। चौथा नियम प्योरिटी का, प्योरिटी हमारा मार्ग है, प्योरिटी हमारा जीवन है, इसी की तो हमें जरूरत थी। छोटी मोटी बातें हैं उसको इग्नोर करते हुए इस मार्ग पर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हम सब जानते हैं संपूर्ण प्योरिटी का मार्ग लंबी यात्रा है, कुछ भी उसमें है उसको पार करते आगे चलना है। और पांचवा, हमें देना है, दाता, लेने की कोई इच्छा नहीं। ये मैंने उदाहरण के लिए पांच बातें बताई, आप अपनी भी रख सकते हैं, कोई पसंद है इन पे आप चिंतन करना और कुछ चीजों को स्वीकार करके जीवन की यात्रा को एंजॉय करना है। निगेटिविटी है, कलयुग का अंत है, साथी भी कैसे वैसे हो सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को सफल करना है। अब हम 15 मिनट पावरफुल योग करेंगे। यज्ञ निर्विघ्न हो, एक बहुत सुंदर स्थिति के साथ मैं चमकती हुई मणि ब्रकुटी की कुटिया में, मैं पवित्रता का सूर्य, मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। चले यहां से सूक्ष्म लोक आकाश के पार, सामने खड़े हैं बाप दादा, उनके मस्तक में महाज्योति चमक रही है। केवल ज्ञान सूर्य दिखाई दे रहे हैं, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और दृष्टि देते हुए वरदान दिए, बच्चे विजयी भव। विघ्न विनाशक भव, शक्ति संपन्न भव।